समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम उन खास व्यक्तित्व को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे ऑफ कोर्स इज माय को-होस्ट सरफिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारत और अमेरिका ने आज नई दिल्ली में पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
Addressing the signing ceremony, Electronics and IT Minister Ashwani Vaishnav says India's goal is to take leadership role in semiconductor and electronics industries.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में AI और डीप टेक स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने देश की आवश्यकता अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया।
कांग्रेस एमपी राहुल गांधी अपीयर्स बिफोर सुल्तानपुर कोर्ट इन 2018 डेफेमेशन केस ओवर रिमार्क्स अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट हियरिंग ऑन द 9th of March।
और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से।
And now, listeners, it's time for the segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we'll talk about India AI Impact Summit.
जी अभिषेक, आज भारत AI इम्पैक्ट समिट का पांचवा दिन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार पर देश के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। नई दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में नीति निर्माता, तकनीकी क्षेत्र के नेता, स्टार्टअप, शोधकर्ता और वैश्विक निवेशक एक साथ आए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि AI भारत के भविष्य को कैसे बदल रहा है। स्वास्थ्य सेवा और कृषि में AI पर चर्चा से लेकर फिनटेक और स्मार्ट गवर्नेंस के गहन विश्लेषण तक ये इस आयोजन ने वैश्विक AI शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को उजागर किया है।
Yes, of course, let's not forget, Sir Firozi, that a strong industry presence, major technology players including Google, Microsoft and Nvidia have been a part of the key sessions and panel discussions. With record participation and global attention, the India AI Impact Summit is clearly signaling that India is not just adopting AI, it's aiming to lead. India and the US have signed the Pax Silica Declaration at the India AI Impact Summit in New Delhi today, and this was signed in the presence of senior government leaders from both nations.
बिल्कुल अभिषेक, ये घोषणा महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर के उत्पादन, साथ ही तेजी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगी ताकि एक सुरक्षित और मजबूत वैश्विक सिलिकॉन और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।
एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज टर्म्ड द साइनिंग ऑफ द पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन एंड द इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट ऑन AI अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप on the margins of the AI Impact Summit in New Delhi as another milestone in India-US relations. And in a social media post, the ministry said this reaffirms the shared commitment to resilient supply chains, critical minerals, trusted commute and next-gen AI innovation. And presiding over the signing ceremony, Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, has said that the goal of India is to take a leadership role in semiconductor and electronics industries. Mr. Vaishnav said India's talented engineers are designing the most complex and advanced 2-nanometer chips.
While the world trusts India because we respect IP, we have a large talent pool and we have conducted our foreign policy in a way which creates that trust, and as a part of that today the PAX Silica was signed, which is very important for semiconductor supply chain, semiconductor manufacturing, chip design.
श्री वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर उद्योग को 10 लाख से अधिक प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है और ये जरूरत देश के भीतर ही पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 315 विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थी चिप्स डिजाइन कर रहे हैं।
I would like to extend my special thanks to the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has made all this possible, this entire AI Impact Summit, the silicon supply chain that we are building, and that huge set of new opportunities which are coming for the young population which is here. We are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. Beyond 2047 also, there will be a growth period of another 50 years.
Yes, and the signing ceremony, U.S. Ambassador to India Sergio Gore said that from the trade deal to Pax Silica, to defense cooperation, the potential for India and U.S. to work together is truly limitless.
India's entry into Pax Silica isn't just symbolic. It's strategic. It's essential. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity. Policies that will reinforce U.S.-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world and especially with partners like India. And critically, India brings strength. Peace comes through strength. India understands this. India understands strong borders. That strength, that sovereignty, is exactly what Pax Silica amplifies.
वहीं अमरीकी विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि ये दस्तावेज केवल कागज पर किया गया समझौता नहीं है बल्कि एक साझा भविष्य का रोड मैप है. उन्होंने कहा कि दोनों देश एक नई संरचना का निर्माण कर रहे हैं और एआई शक्ति को लोगों के हाथों में सौंपती है और कई संभावनाओं को जन्म देती है.
It's a profound honor to be here in Delhi at the India AI Impact Forum to mark a historic milestone in the partnership between the United States and India. Today we signed the Pax Silica Declaration, a document that's not merely an agreement on paper, but a roadmap for a shared future.
And our correspondent reports that the joining of India in the Pax Silica Coalition marks a significant milestone in strengthening of strategic technology and supply chain cooperation between India and the United States. We have more from a correspondent.
Pax Silica is envisioned as a strategic coalition of trusted nations committed to securing the silicon stack from critical minerals and semiconductor fabrication to advanced AI systems and deployment infrastructure. The initiative seeks to reduce over-concentration in global supply chains, prevent economic coercion, and ensure that emerging technologies are developed and governed by open democratic societies. Pax Silica is the U.S. administration's initiative to secure supply chains for silicon-based technologies. It was initially launched in December last year with 8 members including Japan, South Korea, Singapore, Netherlands, United Kingdom, Israel, United Arab Emirates and Australia. With Vishnu Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
इस बीच इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने आज कहा कि विज्ञान आधारित शासन प्रगति में बाधा नहीं बल्कि समाधानों को गति प्रदान करता है.
साइंस लेड गवर्नेंस इज नॉट अ ब्रेक ऑन प्रोग्रेस, इट इज एन एक्सेलरेटर फॉर सॉल्यूशंस, अ वे टू मेक प्रोग्रेस सेफर, फेयरर एंड मोर वाइडली शेयर्ड. It helps us identify where AI can do the most good the fastest. And it helps us anticipate impacts early, from risks for children to labor markets to manipulation at scale, so countries can prepare, protect and invest in people.
Yes, and the government has extended the India AI Impact Expo by one day till tomorrow. Minister of Electronics and Information Technology Secretary S. Krishnan said this move has been taken because of the overwhelming response from exhibitors, innovators and visitors. And he said that on the 20th and 21st of this month, the expo will remain open until 8 p.m. And the summit reflects a shift from passive learning to active participation, redefining employment across sectors, spotlighting new skills, and the urgent need to sync education with industry needs. The focus is on boosting employability, enhancing productivity, and forging seamless bridges from classroom to AI-driven careers.
बिल्कुल अभिषेक, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में युवा नव प्रवर्तक नवाचार चुनौतियों, स्टार्टअप प्रस्तुतियों और लाइव समाधान प्रदर्शनों जैसे व्यवहारिक मंचों के माध्यम से इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये गतिविधियां कौशल को बाजार की जरूरतों से जोड़ती हैं और भारत की युवा क्षमता को उत्पादक क्षमता में परिवर्तित कर रही हैं.
Yes, and to conclude our discussion here today, the India AI Impact Summit 2026 strengthens India's role as a key platform for shaping the global AI agenda Anchored in the seven chakras and the three sutras of people, planet and progress, the summit advances a development-oriented framework for artificial intelligence, and by linking policy with implementation and innovation with public purpose, the summit establishes a structured approach to responsible AI deployment.
ये शिखर सम्मेलन तकनीकी प्रगति को समावेशी विकास और सतत विकास से के साथ जोड़ता है। ये सम्मेलन भारत को वैश्विक एआई सहयोग में एक संयोजक और भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है, जो साझा मानकों, सहयोगात्मक ढांचों और जनहित के लिए सुलभ समाधानों का समर्थन करता है।
Yes, and so, Sir Firozi, as evening approaches and the hall lights soften, visitors continue to linger, examining interfaces and asking questions. The summit does not promise instant change, rather it reflects a steady integration of intelligent systems into sectors that shape everyday life. And in transport corridors, temple complexes, classrooms and many more, AI has been layered into existing frameworks to enhance efficiency, access and safety. And in that gradual integration lies the enduring promise of AI in India's development journey.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं देश की परिक्रमा पर और सबसे पहले चल रहे हैं बिहार। बिहार का नवादा मंडल कारा इन दिनों अपनी एक अनूठी पहल के कारण चर्चा के केंद्र में है। इस पहल के तहत जेल में बंद कैदियों को सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन मिल रहा है और साथ ही कैदियों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग सहित कई तरह के प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
नवादा मंडल कारा में बंद कैदी चंदन कुमार ने दारोगा की लिखित परीक्षा पास की और जेल में रहकर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी की। हालांकि इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। वे जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सहायताओं को लेकर काफी खुश हैं। मंडल कारा में नियमित रूप से कंप्यूटर की कक्षाओं का भी संचालन होता है। कैदी विपिन कुमार यादव, जो डॉक्टरेट डिग्री धारक हैं, उनका कहना है कि आज का दौर आईटी का है और तकनीकी ज्ञान के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। वे जेल से बाहर निकलकर नई पहचान बनाने की उम्मीद जताते हैं। जेलर सुशील कुमार कहते हैं कि बंदियों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे रिहाई के बाद कैदी समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे। नवादा मंडल कारा की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जेल की सलाखों के पीछे अब सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य की तैयारी भी हो रही है। परिक्रमा के लिए पटना से मैं अभिषेक दास।
यस, एंड फ्रॉम पटना वी नाउ मूव ऑन टू झारखंड। And the three-day state Itkori Festival 2026 commenced in Chhatra, district of Jharkhand yesterday. We have a report.
The Itkori Mohotsav in Chhatra was inaugurated yesterday at the historic Ma Bhadrakali temple premises, where Finance Minister Radha Krishna Kishore and Minister Yogendra Prasad lit the ceremonial lamp. Several public representatives, including MP Kalicharan Singh and MLAs Janardan Paswan and Ujjwal Kumar Das, were present. A coffee table book on Itkori's heritage, along with the temple's official website, was launched. Minister Yogendra Prasad conveyed Chief Minister Hemant Soren's message, stating that the state government is committed to the development of the Mahotsav and temple complex. Cultural programs and folk performances on the first day drew significant public interest, with more cultural and spiritual events scheduled over the next 2 days. Mahvish Rahman, Akashwani, Ranchi.
और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में हिसार के रावलवास गांव निवासी किसान कृष्ण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा एक पत्र मिला है। इसमें श्री मोदी ने कृष्ण कुमार की प्राकृतिक खेती करने के लिए तारीफ की है।
कृष्ण कुमार दलहनी फसलों की कुदरती ढंग से खेती करते हैं। कृष्ण कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि पत्र पढ़कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण कुमार ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एक किसान को भी पत्र लिखकर उसके प्रयास की प्रशंसा करते हैं, इससे उत्साह मिलता है। कृष्ण कुमार ने बताया, गत वर्ष अक्टूबर माह में श्री मोदी ने दलहनी फसलों की खेती करने वाले 15 किसानों से मुलाकात करके उनके खेती करने के तरीके की जानकारी ली थी। कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वभाव बहुत ही सरल है, उनसे मिलकर और उनके शब्दों से नई ऊर्जा मिलती है। उसने बताया कि उसने वापस आकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे अपने मुलाकात का अनुभव साझा किया था, जिसके बाद उन्हें ये पत्र मिला है। कृष्ण कुमार ने बताया कि वे सभी किसानों को दलहनी फसल की खेती करने और जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने की सलाह देते हैं। कृष्ण कुमार ने बताया कि वे दलहनी फसलों और सब्जी की कुदरती ढंग से खेती करते हैं और उनका सारा उत्पाद बिक जाता है। कुदरती खेती अपनाने से आय में भी वृद्धि हुई है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
Yes. Yes, and we have one more story in our correspondence corner. And at the India AI Impact Summit in Delhi, Karnataka highlighted its growing leadership in artificial intelligence. Recognized as one of the world's top hubs for AI talent, Bengaluru continues to attract global innovators. We have more from a correspondent.
Under its Deep Tech Decade initiative, Karnataka is supporting startups with grants of up to Rs. 1 crore, promoting responsible AI adoption, strengthening skill development, building robust incubation ecosystems, and establishing centers of excellence to drive innovation and enhance e-governance. At the summit, a strategic MOU was signed between H Company and St. John's Medical College and St. John's Research Institute to pilot advanced enterprise AI solutions for hospital operations and maintenance, workflow automation, advancing responsible AI use in healthcare. Karnataka also engaged with US-India Business Council to foster a more conducive environment for American companies to grow and innovate in Bengaluru. The Department of Electronics, IT, Biotechnology and Science and Technology reaffirmed its commitment to collaborating with startups, academia, industry bodies and international partners to strengthen Karnataka's leadership in emerging technology. Pondumon reporting for Parikrama from Akashavani, Bengaluru.
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की भी हलचल ले लेते हैं।
Yes, and we start off with the T20 World Cup, and in the ICC T20 World Cup, Australia will take on Oman in the last Group B encounter at the Pallakkale International Cricket Stadium in Sri Lanka today. The match will begin at 7 p.m. However, this match is inconsequential dead rubber as both teams have already been eliminated from the tournament. Zimbabwe and Sri Lanka have already secured the two qualification spots for the Super 8 stage from Group B. Tomorrow, New Zealand will take on Pakistan in the opening fixture of the Super 8 stage from Group 2 at the R. Premadasa International Cricket Stadium in Colombo, Sri Lanka. India will play its first Super 8 stage match on Sunday against South Africa at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will begin at 7 p.m. Semi-finals of the T20 World Cup are scheduled on the 4th and 5th of March, while the final will be played on the 8th of next month. And moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, bounced back today, rising around 0.4%. The Sensex climbed 317 points to close at 82,815, while the Nifty added 117 points to settle at 25,571. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और अभिषेक के साथ, और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
The 20th of February 1868 was the day when the paper Amrit Bazar Patrika was first published in undivided Bengal's Jessore district. The paper was published by two brothers, Shishir Ghosh and Motilal Ghosh. In 1871, the paper shifted its base to Kolkata. Its sharp criticism of the British was making the colonial government uncomfortable.
In 1878, the British enacted a draconian law called the Vernacular Press Act to curtail criticism of the government in the local language press. One publication that refused to stop was the Amrit Bazar Patrika. The day after the act was promulgated, the newspaper started publishing only in English and continued to challenge the colonial government. The legendary Amrit Bazar Patrika and its journalists were at the forefront of India's struggle for independence and early proponents of the concept of press freedom.
In addition to this, the paper raised money to fight sedition cases against Bal Gangadhar Tilak and strongly objected to Netaji Subhash Chandra Bose's expulsion from the then Calcutta's Presidency College. After the retirement of Shishir Ghosh, his son Tushar Kanti Ghosh took over in 1931. He was arrested for criticizing the biased judicial system of the British.
In 1946, the newspaper left its front page blank for 3 days to oppose the horrific communal violence that had engulfed Kolkata ahead of the partition of India. The paper finally shut its press in 1991 after a run of 123 years. And it was on the 20th of February 1947 that Clement Attlee declared that the British would quit India by June 1948.
On February 20th, 1947, British Prime Minister Clement Attlee announced in the House of Commons the decision of the British government to transfer power to responsible Indian hands by a date not later than June 30th, 1948. The Prime Minister and the Secretary of State, who made an identical statement in the House of Lords, expressed the government's regret that continuing differences among the Indian parties prevented the transfer of power.
His Majesty's government will have to consider to whom the powers of the central government in British India should be handed over on due date, whether as a whole to some form of central government for British India or in some areas to the existing provincial governments or in such other ways as may seem most reasonable and in the best interests of the Indian people.
The arrival of Mountbatten as Viceroy, with orders to wind up what remained of the British administration in the next 14 months, gave a sharper edge to the British government's purpose. However, on the 3rd of June 1947, Mountbatten declared that the British would leave India sooner, on the 15th of August 1947.
आज ही पुण्यतिथि है भवानी प्रसाद मिश्र जी की. ये हिंदी के प्रमुख कवि, गांधीवादी विचारक और सहज शैली के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार थे. दूसरा सप्तक के कवि और गीत फरोश के रचयिता मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है. इन्होंने अपनी रचना बुनी हुई रस्सी, जो 1972 में आई, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त किए. गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं.
Yes, and Hunter Stockton Thompson passed on this day in 2005. He was an American journalist and author, regarded as one of the pioneers of new journalism. He rose to prominence with the book Hell's Angels in 1967, for which he lived a year among the Hell's Angels Motorcycle Club to write a first-hand account of their lives and experiences. In 1970, he wrote an unconventional article titled The Kentucky Derby is Decadent and Depraved for Scanlon's Monthly, which further raised his profile as a countercultural figure. It also set him on the path to establish the subgenre of new journalism that he called Gonzo, a style in which the writer becomes central to and the participant in the narrative.
आज ही पुण्यतिथि है शरद चंद्र बोस जी की भी. इनका जन्म 7 सितंबर 1889 को कलकत्ता में हुआ था. ये बैरिस्टर और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे. ये जानकी नाथ बोस के बेटे और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे. शरद चंद्र बोस कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य रहे और बंगाल विधानसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता थे.
Kurt Donald Cobain was born on this day in 1967. He was an American musician. He was the lead vocalist, guitarist, primary songwriter, and founding member of the grunge band Nirvana. And through his angsty songwriting and anti-establishment persona, he widened the thematic conventions of mainstream rock music, and he was heralded as a spokesman of Generation X and is widely recognized as one of the most influential rock musicians. Let's listen in to his hit track, Smells Like Teen Spirit.
Yeah.
आज हरीश चंद्र सखाराम भटवड़ेकर जी की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें सेव दादा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय थे। पेशे से महाराष्ट्रियन पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हरीश चंद्र 1896 में मुंबई में ल्यूमर ब्रदर्स की फिल्म प्रदर्शनी के पहले गवाहों में से एक थे। इन्होंने जल्द ही लंदन से एक फिल्म कैमरा और एक प्रोजेक्टर प्राप्त किया और शहर के दैनिक जीवन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर फिल्में बनाई। सखाराम की द रेसलर्स की शूटिंग मुंबई में कुश्ती मैच के दौरान की गई और ये किसी भारतीय द्वारा शूट की गई पहली फिल्म थी। इसके अलावा इन्होंने पहलवान, अताश बहराम और दिल्ली दरबार जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।
Amin Sayani passed on this day in 2024. He was a radio announcer. He achieved fame and popularity across the Indian subcontinent when he presented the Binaka Geetamala program of top hit songs from Hindi cinema over the airwaves of Radio Ceylon. He was one of the most imitated announcers.
बिल्कुल अभिषेक, अमीन सयानी को आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी के रूप में जाना जाता है। रेडियो जॉकी के रूप में वो विश्व के श्रेष्ठ जॉकी माने जाते थे। गीतमाला प्रोग्राम के जरिए सुनी गई अमीन सयानी की आवाज बहनों और भाइयों आम लोगों को काफी लंबे समय तक गुदगुदाती रही, तो आइए आज उनकी यही आवाज एक बार फिर सुन लेते हैं।
नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
आप सुन रहे हैं विविध भारती।
मेरे लिए गीतमाला सिर्फ एक हिट प्रोग्राम नहीं है, वो मेरी शख्सियत, मेरे वजूद का एक हिस्सा है और आज तमाम इतिहास इस कारवा में शामिल हो गए हैं।
Yes, of course, and we are also remembering Anu Kapoor, who was born on this day 1956. He's an actor, singer, director, radio disc jockey and television presenter who has appeared in over 100 films as well as television series. His career spanned over 45 years and as an actor, producer, director and singer. Besides acting, he also does a radio show and he has won numerous awards in his career, including 2 National Film Awards, 1 Filmfare Award and 2 Indian Television Academy Awards. Let's go ahead and listen to a dialogue from one of his hit movies.
कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि तेरी चाय ज्यादा मीठी है या तेरी आवाज, कहीं तू चाय में कुल्ला तो नहीं करता।
अरे तुमने पुकारा और हम चले आए,
मुझे तो
जान हथेली पर ले आए।
जी जी लक्ष्मण जी की नजर
घर नहीं कान रहे,
वही काम तेरे पर पड़े, तू तो चला सीधा।
अन्नू कपूर ने तेजाब, मिस्टर इंडिया, द्रोहकाल, गर्दिश, ऐतराज जैसी कई मुख्य फिल्मों में काम किया, तो आइए एक और उनकी एक और फिल्म का डायलॉग सुनते हैं।
तुम वकीलों में पता ही नहीं था, हम तो समझे मुंशी हो रिजवी साहब के। खैर चलो अच्छा है, मगर इतना सेंटी क्यों रहे, हंसते खेलते लड़ो यार। वो लखनऊ की सड़कों पे बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में।
यस, एंड केवी Subbanna was born on this day in 1932. He is an acclaimed dramatist and writer in Canada. He was the founder of the world-famous Nina Sam Institute, founded in 1949. Under the guidance of K.V. Subbanna, it made significant contribution to Kannada theatre and other performing arts. He was awarded in 1991 with the Raymond Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts in recognition of his contribution to enrich rural Karnataka with the world's best films and the delight and wonder of the living stage. He was awarded the Padma Shri in 2004. And we were also remembering Bhavendranath Saikia, who was born on this day in 1932. He was a novelist, short story writer, editor and film director from Assam, India. Saikia received his doctorate in physics from the University of London and he has also won the Sahitya Academy in 1976 and also was recognized with the Padma Shri in 2001.
आज कैफ भोपाली जी की जयंती है। ये उर्दू कवि और गीतकार थे। ये उर्दू मुशायरा मंडलों में से एक कवि थे और कमाल अमरोही की 1972 की क्लासिक फिल्म पाकीज़ा में मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए गीत चलो दिलदार चलो जैसे गीतों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कुछ गजलें भी लिखी, जैसे तेरा चेहरा सुहाना लगता है, झूम के जब रिंदों ने पिला दी, इसे जगजीत सिंह द्वारा गाया गया, तो आइए इनकी फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो,
हम भी तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो,
हम भी तैयार चलो।
श्रो श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ इजाजत दीजिए। सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।